अध्याय 13 प्रमुख उद्योग अवस्थिति एवं वितरण। धातुकर्मी उद्योग, इसमें लोहा एवं इस्पात उद्योग। लोहा एवं इस्पात आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी हैं। यह मशीनों, उपकरणों, निर्माण कार्य, परिवहन, कृषि उपकरणों तथा अनेक अन्य उद्योगों के लिए जो आधुनिक जीवन के लिए आवश्यक हैं कच्चा माल प्रदान करता है। यद्यपि भारत का विश्व के इस्पात उत्पादकों में 11वां स्थान सन 2000 के अनुसार है, उसका प्रति व्यक्ति इस्पात उपभोग 26 किलोग्राम, विश्व के औसत 150 किलोग्राम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे औद्योगिक देश 700 किलोग्राम की अपेक्षा बहुत कम है। ऐतिहासिक विकास। भारत में इस्पात का निर्माण 1500 ईसा पूर्व से प्रचलित है। दिल्ली के निकट मेहरौली का सुप्रसिद्ध लौह स्तंभ 350 ईस्वी का है। हैदराबाद में निर्मित उड्स इस्पात मध्ययुग में फारस, आधुनिक यूरान तथा अन्य देशों को तलवारें बनाने के लिए निर्यात किया जाता था। भारत में आधुनिक स्तर पर लोहा एवं इस्पात उत्पादन का प्रथम प्रयास पोर्टो नोवो तमिलनाडु में 1830 में किया गया था, किंतु यह असफल रहा। 1830 से 60 के मध्य बेपुर, केरल, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, बीरभूम, पश्चिम बंगाल तथा कालाडूंगी उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए संयंत्रों को भी असफलता हाथ लगी। 1871 में कुलती पश्चिम बंगाल में बाराकर आयरन वर्क्स नामक एक पीक आयरन की इकाई स्थापित की गई, जिसे 1889 में बंगाल आयरन कंपनी ने खरीद लिया तथा बाद में यह इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी इस्को के नाम से विख्यात हुई। लोहा एवं इस्पात उद्योग में एक महान प्रस्फोट तब हुआ जब सांकची आधुनिक जमशेदपुर नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना की गई। 1918 में हीरापुर पश्चिम बंगाल में एक नए इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, जिसे 1953 में इस्को में मिला लिया गया। दक्षिण भारत में भद्रावती, कर्नाटक में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड VISL की स्थापना की गई। लोहा एवं इस्पात उद्योग की तीव्र प्रगति 1956 से 61 द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, जब हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड HCL के अंतर्गत 3 समेकित इस्पात संयंत्र रुरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर प्रत्येक 10 लाख टन क्षमता में स्थापित किए गए। टिस्को तथा इस्को की क्षमता की क्रमशः 20 लाख टन तथा 10 लाख टन कर दी गई। 1964 में तृतीय योजना के दौरान बोकारो में 17 लाख टन क्षमता का एक नया इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में 4 नए इस्पात संयंत्र सलेम तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश तथा पारादीप उड़ीसा में स्थापित करने का निर्णय किया गया। जनवरी 1973 में स्थापित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में इस्पात उद्योग के विकास का समन्वय करता है। अवस्थिति प्रतिरूप लोकेशनल पैटर्न। लोहा एवं इस्पात संयंत्र की अवस्थिति को 3 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं। पहला, कच्चे मालों अर्थात लौह अयस्क, कोकिंग कोयला, मैग्नीज, चूना या डोलोमाइट को एकत्र करने की लागत। दूसरा, प्रसंस्करण की लागत तथा तीसरा, तैयार उत्पादों के विपणन की लागत। सामान्यतः एक टन पिग आयरन कच्चा लोहा बनाने के लिए 2.5 टन कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। स्पष्टतः कुशल प्रौद्योगिकी तथा विशाल पूंजी की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। अतएव इस्पात उद्योग की अवस्थिति एक या दूसरे कच्चे माल, मुख्यतः लौह अयस्क या कोयला के स्रोत के निकट होती है। आजकल परिवहन तथा प्रसंस्करण में लोहे की रत्ती को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के प्रौद्योगिक विकासों के परिप्रेक्ष्य में समुद्र तटीय अवस्थिति भी लाभपूर्ण होती है। इस प्रकार इस्पात विनिर्माण के केंद्रों की अवस्थिति 3 प्रकार की हो सकती है। पहला, कोयला भंडारों अथवा लौह अयस्क भंडारों के निकट। दूसरा, प्रमुख इस्पात उपभोग केंद्रों के निकट तथा तीसरा, समुद्र तटीय अवस्थिति। भारत में उपरोक्त 3 प्रकार की अवस्थितियां पाई जाती हैं। जमशेदपुर, भद्रावती, भिलाई, रुरकेला, दुर्गापुर एवं निचला इस्पात दुबरी उड़ीसा में निर्माणाधीन के संयंत्रों की स्थिति कच्चे माल के निकट है, जबकि विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र की अवस्थिति समुद्र तटीय है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, यह संयंत्र जमशेदपुर झारखंड में गुआ, बादाम पहाड़ आदि लौह श्रेणियों के मध्य तथा झरिया रानीगंज कोयला क्षेत्रों के निकट कोलकाता मुंबई रेलमार्ग को जोड़ने वाले ट्रंक रेलमार्ग पर स्थित है। मैग्नीज तथा चूना निकटवर्ती गुआ तथा बादाम पहाड़ के निक्षेपों से प्राप्त होते हैं। प्रसंस्करण में बड़ी मात्रा में आवश्यक स्वच्छ जल सुवर्ण रेखा तथा खोरकाई नदियों से प्राप्त होता है। वर्ल्ड स्टील डायनामिक्स के अनुसार इस संयंत्र की अवस्थिति सर्वोत्तम मानी गई है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको इसकी दो इकाइयां हैं, हीरापुर में पिग आयरन तथा बर्नपुर में इस्पात बनता है। यह रानीगंज कोयला क्षेत्र के मध्य स्थित है, किंतु लौह अयस्क मैग्नीज तथा चूना पत्थर दूर से मंगाने पड़ते हैं। यह संयंत्र आसनसोल कोलकाता मुख्य रेल मार्ग पर दामोदर नदी के किनारे स्थित है, किंतु यह संयंत्र दोषपूर्ण अवस्थिति के कारण लाभान्वित नहीं हो सका। विश्वेश्वरैया स्टील लिमिटेड भद्रावती VISL भद्रावती। यह संयंत्र जो पहले मैसूर आयरन एंड लिमिटेड स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, बाबा बुदन की पहाड़ियों के लौह अयस्क भंडारों का दोहन करने के लिए स्थापित किया गया। मूलतः इसमें शक्ति के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता था, अब विद्युत भट्टियों का प्रयोग होता है। इसके लिए मैंगनीज स्थानीय रूप से तथा स्वच्छ जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड रुड़केला HCL। यह संयंत्र उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में कोलकाता नागपुर रेल मार्ग पर सांख तथा कोयल नदियों के संगम पर स्थित है। लौह अयस्क बरसुआ से तथा कोयला बोकारो करगली झरिया तालचीर एवं कोरबा क्षेत्रों से मैंगनीज बारा जामदा से चूना पत्थर हाथीबाड़ी पूर्णपानी तथा बीर मित्रपुर से एवं डोलोमाइट बड़ा द्वार से प्राप्त होते हैं। अतिरिक्त शक्ति हीराकुंड जल विद्युत प्रणाली से प्राप्त होती है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई HCL भिलाई। यह संयंत्र दुर्ग जिले छत्तीसगढ़ में कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। यह कच्चा माल लौह अयस्क ढल्ली राजहरा खदानों से कोयला कोरबा बोकारो करगली एवं झरिया क्षेत्रों से चूना पत्थर नंदिनी खदानों से मैंगनीज बालाघाट तथा भंडारा क्षेत्रों से डोलोमाइट भटपुरा रामटोला हरदी कसौंदी परसोदा खैरा तथा पटपारा से जल तंदुला नहर एवं जलाशय से तथा विद्युत कोरबा तापीय शक्ति गृह से प्राप्त करता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर HCL दुर्गापुर। यह संयंत्र दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे कोलकाता से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी निगम तथा कोलकाता नगर एवं पत्तन की निकटता इस संयंत्र के लिए लाभदायक है। इसे लौह अयस्क उड़ीसा के गुआ प्रदेश की बोलानी खदानों से कोयला झरिया एवं बाराकर क्षेत्रों से चूना पत्थर बीर मित्रपुर तथा हाथीबाड़ी से मैग्नीज जामदा से स्वच्छ जल दामोदर नदी से तथा विद्युत दामोदर घाटी निगम से के विद्युत गृहों से प्राप्त होती है। बोकारो स्टील लिमिटेड बोकारो BSL बोकारो। यह संयंत्र हजारीबाग जिले झारखंड में बोकारो तथा दामोदर नदियों के संगम के निकट कोयला समृद्ध प्रदेश में अवस्थित है। इसे बोकारो करगली तथा झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला लौह अयस्क क्योंझर जिलों की किरीबुरु खदानों से चूना पत्थर पलामू जिले में भवानीपुर तथा डाल्टनगंज से डोलोमाइट बिलासपुर जिले छत्तीसगढ़ से स्वच्छ जल दामोदर नदी पर निर्मित तेनू बांध से तथा सस्ती शक्ति दामोदर घाटी निगम से प्राप्त होती है। वस्तुतः बोकारो संयंत्र की स्थिति वेबर परिकल्पित आदर्श अवस्थिति त्रिभुज के अंदर है, जो सबसे कम लागत वाली स्थिति है। सलेम स्टील प्लांट SSP सलेम। यह संयंत्र सलेम तमिलनाडु में स्थित है। निकटवर्ती क्षेत्र लौह अयस्क चूना पत्थर लौह मिश्र धातुओं तथा रिफैक्ट्री से संपन्न है तथा इसे सस्ती शक्ति चारकोल एवं बाजार की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। विजयनगर स्टील प्लांट। यह संयंत्र बेलारी जिले कर्नाटक में हासपेट के निकट तोरनगल स्थान पर अवस्थित है। इसे हासपेट प्रदेश से लौह अयस्क कानन घाटी छत्तीसगढ़ तथा सिंगुरैनी आंध्र प्रदेश से कोयला 200 किलोमीटर की दूरी पर चूना पत्थर तथा डोलोमाइट तथा स्वच्छ जल एवं सस्ती जल विद्युत शक्ति तुंगभद्रा परियोजना से प्राप्त होती है। VSL विशाखापट्टनम। यह समुद्र तटीय संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों तथा बैलाडीला छत्तीसगढ़ के लौह अयस्क निक्षेपों से जुड़ा है। इसे चूना पत्थर डोलोमाइट तथा मैग्नीज छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा से प्राप्त होते हैं। कोयला की लगभग 3/4 आवश्यकता आयातों द्वारा पूर्ण होती है। पूर्णतः आधुनिकीकृत संयंत्र 1992 में कार्यरत हुआ। यहाँ उत्तम किस्म का इस्पात बनता है, जो चीन तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को निर्यात किया जाता है। सरकार ने दैतारी उड़ीसा में पारादीप के निकट तथा डोलवी महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का भी निश्चय किया है। लघु इस्पात संयंत्र 10,000 टन से 5 लाख टन की क्षमता वाले संयंत्र सामान्यतः रद्दी स्क्रैप पिग आयरन या स्पंज आयरन प्रयोग करते हैं तथा विद्युत भट्टियों द्वारा इस्पात बनाते हैं। देश में 200 से अधिक लघु इस्पात संयंत्र हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 12 मिलियन टन इस्पात उत्पादन की है। ये संयंत्र देश के विभिन्न भागों में समेकित इस्पात संयंत्रों से दूर स्थित है। उत्पादन विगत 5 दशकों में देश में पिग आयरन तथा इस्पात के उत्पादन में चमत्कारिक वृद्धि हुई, जिसका विवरण निम्न है। लोहा एवं इस्पात उत्पादन की उपनतियां मिलियन टन में वर्ष 1950-51 में पिग आयरन 1.69, इस्पात पिंड 1.47, तैयार इस्पात 1.04। वर्ष 1960-61 में पिग आयरन 4.31, इस्पात पिंड 3.48, तैयार इस्पात 2.39। वर्ष 1970-71 में पिग आयरन 6.99, इस्पात पिंड 6.14, तैयार इस्पात 4.64। 1980-81 में पिग आयरन 9.55, इस्पात पिंड 10.33, तैयार इस्पात 6.8। वर्ष 1990-91 पिग आयरन 12.15, इस्पात पिंड 11.10, तैयार इस्पात 13.53। वर्ष 2000-2001 में पिग आयरन 3.39, इस्पात पिंड 0, तैयार इस्पात 29.27। 2001-2002 पिग आयरन 4.08, इस्पात पिंड 0, तैयार इस्पात 30.63। वर्ष 2002-03 में पिग आयरन 5.28, इस्पात पिंड 0, तैयार इस्पात 33.67। वर्ष 2003-04 पिग आयरन 3.76, इस्पात पिंड 0, तैयार इस्पात 36.96। स्रोत इकोनॉमिक सर्वे 2004-05। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत 5 दशकों में देश में तैयार इस्पात के उत्पादन में 33 गुना वृद्धि हुई है। विदेशी व्यापार भारत पर्याप्त मात्रा में पिग आयरन तथा तैयार इस्पात का निर्यात करता है। वर्ष 2003-04 में 0.52 मिलियन टन पिग आयरन तथा 4.84 मिलियन टन तैयार इस्पात का निर्यात किया गया। भारत अपनी उत्तम किस्म की आवश्यकता का एक भाग आयातों द्वारा पूरा करता है। लोहा एवं इस्पात का आयात प्रदर्शित है। तैयार इस्पात का आयात वर्ष 1960-61 में मात्रा लाख टन में, 1960-61 में 13.25, 1970-71 में 6.83, 80-81 में 20.31, 90-91 में 19.20, 2000-2001 में 16.13, 2001-2002 में 14.79, 2002-2003 में 18.01, 2003-04 में 23.75। स्रोत इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2004-05। अधिकांश आयात रूस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम आदि से प्राप्त होता है। वस्त्रोद्योग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वस्त्र, सूती एवं जूट उद्योग भारत में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग समूह है। यह आधुनिक उद्योगों में प्राचीनतम तथा विदेश मुद्रा कमाने का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये दोनों उद्योग चौथे विशालतम उद्योग कुल उत्पादन मूल्य का 20% हैं तथा लगभग 17 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग कॉटन टेक्सटाइल्स भारत चीन के बाद सूती धागे तथा वस्त्रों का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक देश 2001 के अनुसार है। उत्पादन तथा रोजगार दोनों की ही दृष्टि से सूती वस्त्र उद्योग का देश के उद्योगों में विशिष्ट स्थान है। वस्त्रों के अतिरिक्त सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात से देश को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ऐतिहासिक विकास देश में प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना 1818 में कोलकाता के निकट स्थापित किया गया था, किंतु यह प्रयास विफल रहा। देश का प्रथम सफल कारखाना मुंबई में 1851 में स्थापित किया गया। तत्पश्चात देश में बाजारों तथा कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट पहले अहमदाबाद, फिर कानपुर, नागपुर, सोलापुर आदि में सूती वस्त्र के कारखाने स्थापित किए जाते रहे। 1925 से 1945 के मध्य स्वदेशी आंदोलन, वित्तीय संरक्षण, जापानी बाजारों की हानि तथा विश्व युद्ध ने इस उद्योग को बहुत प्रोत्साहन दिया। सूती वस्त्र के कारखानों की संख्या 1926 में 334 से बढ़कर 1945 में 417 पहुंच गई, किंतु 1947 में देश के विभाजन से उद्योग पर कुठाराघात हुआ, क्योंकि लंबे रेशे वाली कपास उगाने का लगभग 22% क्षेत्र तथा 14 कारखाने पाकिस्तान में चले गए। भारत में 409 कारखाने शेष रह गए। देश को कच्चे माल की कमी का गंभीर संकट झेलना पड़ा, जिसे देसी उत्पादन तथा आयातों में वृद्धि करके पूरा किया जा सका। अब 2001 में देश में 1846 कारखाने 35,530 तकुए स्पिंडलेस तथा 123,000 करघे लूम्स हैं। भारत में सूती कारखानों के दो प्रभाग हैं, कताई मिल तथा संयुक्त कताई एवं बुनाई मिल। स्थानीकरण एवं वितरण, लोकलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सूती वस्त्र विनिर्माण में अनेक प्रक्रियाएं एवं अवस्थाएं होती हैं, अर्थात धागे की कताई, वस्त्र की बुनाई, फिनिश, वस्त्र सिलना तथा बुनना। इसका कच्चा माल शुद्ध होता है, अतः विनिर्माण प्रक्रिया में कोई भार हानि नहीं होती, तथा वस्त्र एक उपभोक्ता वस्तु है, अतः यह प्रमुखतः एक बाजारोन्मुखी उद्योग है। यद्यपि औद्योगिकरण की प्रारंभिक अवस्था में सूती वस्त्र उद्योग मुंबई के चारों ओर तथा अहमदाबाद में कपास उत्पादक क्षेत्रों में संकेंद्रित हुआ, जहां पूंजी तथा पत्तन की सुविधाएं प्राप्त थीं। परिवहन के आधुनिक साधनों के विकसित होने पर यह उद्योग उपभोग, पूंजी तथा सस्ते दक्ष श्रमिकों वाले केंद्रों की ओर फैला। महाराष्ट्र 122 कारखाने, 23.4% तकुओं तथा लगभग 37% करघों सहित देश का 12% कारखाना निर्मित सूती धागा तथा 46.2% कारखाना निर्मित सूती वस्त्र तैयार करता है। मुंबई देश का बृहत्तम सूती वस्त्रों का केंद्र है, जहां देश के 16.4% तकुए तथा 29.5% करघे पाए जाते हैं। मुंबई को उद्योग के पूर्वारंभ, कच्चे माल की निकटता, दक्ष श्रम, पूंजी, पत्तन, परिवहन बाजार तथा समुद्री जलवायु की सुविधाएं प्राप्त हैं। इसे भारत का कार्टनोपोलिस उचित ही कहा जाता है। सोलापुर, पुणे, नागपुर, जलगांव आदि राज्य के अन्य प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं। गुजरात, गुजरात में 130 कारखानों, देश के लगभग 29% तकुओं तथा 30.7% करघों सहित वस्त्र बुनने की एक लंबी परंपरा रही है। इसे कच्चे माल, बृहद बाजार, पूंजी, पत्तन तथा परिवहन की सुविधाएं प्राप्त हैं। यह देश का 7.5% सूती धागा तथा 26% कारखाना निर्मित वस्त्र तैयार करता है। अहमदाबाद बृहत्तम सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, जहां 51 कारखाने, देश के 12% तकुए तथा 23% करके विद्यमान हैं। भरूच, वडोदरा, राजकोट, भावनगर, कलोत, सूरत, खंभात, मोरवी आदि राज्य के अन्य महत्वपूर्ण वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक कारखाने 215 तथा देश के लगभग 5% करघे एवं 25% तकुए स्थित हैं। यहाँ देश का 42.2% कारखाना निर्मित सूती धागे का उत्पादन होता है। वस्त्र उत्पादन 9.5% में इसका देश में तृतीय स्थान है। यहाँ कच्चे माल, दक्ष श्रम, सस्ती जल विद्युत तथा बाजार की सुविधाएं प्राप्त हैं। कोयम्बटूर 81 कारखाने बृहत्तम वस्त्र उत्पादक केंद्र है। चेन्नई, मदुरै, तिरुनेलवेली, तुतिकोरीन, सलेम, विरुद्धनगर, उदमपलेट, औलाची आदि अन्य महत्वपूर्ण वस्त्रोत्पादक केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में 50 सूती वस्त्र के कारखाने, 24 कताई मिल तथा 17 संयुक्त तथा देश के 6% से अधिक तकुए एवं करघे स्थित हैं। यह देश का 2.2% कारखाना निर्मित सूती धागा तथा 2.7% सूती वस्त्र उत्पादन करता है। राज्य को कच्चे माल, श्रम, बाजार, परिवहन आदि सभी की सुविधाएं प्राप्त हैं, किंतु बार बार विद्युत कटौती की असुविधा है। कानपुर 14 कारखाने अग्रणी वस्त्र उत्पादक केंद्र है। मुरादाबाद, मोदीनगर, अलीगढ़, आगरा, इटावा, गाजियाबाद, बरेली, हाथरस, रामपुर, मेरठ, मौनात भंजन आदि अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में 55 कारखाने, देश के लगभग 5% करघे तथा तकुए एवं लगभग 3% धागा तथा वस्त्र उत्पादन होता है। राज्य को बाजार, सस्ता श्रम, सस्ती शक्ति, परिवहन आदि लाभ प्राप्त हैं जो इस उद्योग के विकास के लिए आवश्यक हैं। कोलकाता बृहत्तम वस्त्रोत्पादक केंद्र है। हावड़ा, सोदेपुर, सीसमपुर, श्यामनगर, मुर्शिदाबाद, सैकिया, पनिहाटी, मैरीग्राम आदि अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कर्नाटक में 44 कारखाने स्थित हैं तथा यह देश का 2.9% कारखाना निर्मित सूती धागा तथा 0.6% वस्त्र तैयार करता है। राज्य में हथकरघा तथा शक्ति चालित करघा उद्योग भी उन्नत है। अधिकांश कारखाने बेंगलोर, मैसूर, हुबली, बेलारी, देवांगेरे, गोकक, गुलबर्गा तथा चित्रदुर्ग में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 60 कारखाने स्थित हैं जिनमें से 29 कताई मिल हैं। अधिकांश कारखाने तेलंगाना के कपास उत्पादन क्षेत्रों में अवस्थित हैं जो केवल धागा उत्पादन करते हैं। हैदराबाद, वारंगल, गुंटूर, अदोनी, रामागुंडम, गुंतकल तथा तिरुपति प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 33 कारखाने तथा देश के 3.5% तकुए एवं 6.2% करघे स्थित हैं। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, नागदा, देवास, भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर, राजनंदगांव, रतलाम तथा मंदसौर प्रमुख वस्त्रोत्पादक केंद्र हैं। राजस्थान, राजस्थान में 34 कारखाने स्थित हैं जो भारत का 3% धागा एवं वस्त्र उत्पादन करते हैं। श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, कोटा, ब्यावर, पाली, विजयनगर, किशनगढ़ आदि प्रमुख वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। केरल में 29 कारखाने स्थित हैं जो देश का 1.5% सूती धागा तथा 0.7% सूती वस्त्र तैयार करते हैं। यहाँ कुटीर तथा हथकरघा उद्योग भी उन्नत हैं। वस्त्र उत्पादक केंद्रों में अलवाए, कोची, अलगप्पा नगर तथा अलापुझा उल्लेखनीय हैं। अन्य सूती वस्त्र उत्पादक राज्य पंजाब 21 कारखाने, हरियाणा 10 कारखाने, उड़ीसा 10 कारखाने, बिहार 6 कारखाने, दिल्ली 4 कारखाने तथा पांडिचेरी 5 कारखाने हैं। उत्पादन, देश में सूती वस्त्र उत्पादन 1950-51 में 4215 मिलियन वर्ग मीटर से बढ़कर 2003-04 में 18040 मिलियन वर्ग मीटर हो गया। यह उल्लेखनीय है कि 1950-51 में कारखाना क्षेत्र का अंशदान कुल वस्त्र उत्पादन में 80.7% तथा विकेंद्रित क्षेत्र हथकरघा एवं शक्ति चालित करघा का 19.1% था। 1980-81 तक विकेंद्रित क्षेत्र 58.96% ने कारखाना क्षेत्र 41.03% को पछाड़ दिया। 2003-04 तक कारखाना क्षेत्र का अंशदान घटकर मात्र 5.4% रह गया, जबकि विकेंद्रित क्षेत्र के 94.6% उत्पादन, शक्ति चालित करघा क्षेत्र 82% तथा हथकरघा क्षेत्र 126% ने प्रभावशाली लाभ उत्पादन दर्ज किया। सूती धागे तथा वस्त्र के उत्पादन की उपनतियां। वर्ष 1950-51 में धागा मिलियन किलोग्राम, वस्त्र मिलियन वर्ग मीटर। धागा मिलियन किलोग्राम 1950-51 533, कारखाना क्षेत्र 3401, वस्त्र मिलियन वर्ग मीटर, विकेंद्रित क्षेत्र में 814 योग 4215। 1960-61 में 788, कारखाना क्षेत्र 4649, विकेंद्रित क्षेत्र 2089 योग 6738। वर्ष 1970-71 धागा 929 मिलियन किलोग्राम, कारखाना क्षेत्र 4055, विकेंद्रित क्षेत्र 3547 योग 7602। वर्ष 1980-81 धागा मिलियन किलोग्राम 1067, कारखाना क्षेत्र 3434, विकेंद्रित क्षेत्र 4934 योग 8368। 9091 धागा 1510 मिलियन किलोग्राम, कारखाना क्षेत्र 1819, विकेंद्रित क्षेत्र 13572 योग 15431, 2000 2001 2267 मिलियन किलोग्राम धागा, कारखाना क्षेत्र 1106, विकेंद्रित क्षेत्र 18612 योग 19618, वर्ष 2001 2, धागा मिलियन किलोग्राम 2212, कारखाना क्षेत्र 1036, विकेंद्रित क्षेत्र 18733 योग 19769, वर्ष 2002 3, धागा मिलियन किलोग्राम 2177, कारखाना क्षेत्र 1019, विकेंद्रित क्षेत्र 18281 योग 19300, वर्ष 2003 4, 2121 मिलियन किलोग्राम धागा, कारखाना क्षेत्र 969, विकेंद्रित क्षेत्र 17071 योग 18040, स्रोत इकोनॉमिक सर्वे 2004 5। निर्यात, भारत विश्व का तृतीय बृहत्तम सूती वस्त्र निर्यातक देश है। यद्यपि देश के कुल निर्यातों में विगत कुछ वर्षों में सूती धागे तथा वस्त्र का अंशदान प्रतिशत घटा है, फिर भी ये भारतीय निर्यातों की प्रमुख मदें हैं। 1960-61 में सूती धागे तथा वस्त्रों के निर्यात का कुल निर्यात मूल्य में 10.12% योगदान था, जो 2002-3 में घटकर 6.4% रह गया। भारतीय सूती वस्त्रों की ब्रिटेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, सिंगापुर आदि में बहुत मांग है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट आधुनिक भवन एवं निर्माण कार्यों में अपरिहार्य है, अतएव यह एक महत्वपूर्ण अवसंरचना उद्योग है। वस्तुतः इसका उत्पादन तथा उपभोग किसी भी देश की प्रगति के महत्वपूर्ण सूचक होते हैं। विगत वर्षों में भारत ने सीमेंट उत्पादन में पर्याप्त प्रगति की है तथा यह विश्व का द्वितीय बृहत्तम सीमेंट उत्पादक बनकर उभरा है। भारतीय सीमेंट उद्योग वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए उत्तम गुणवत्ता के सीमेंट का भी उत्पादन करता है। ऐतिहासिक विकास, सागरीय सीपियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रथम सीमेंट का संयंत्र चेन्नई में 1904 में स्थापित किया गया, जो असफल रहा। 1912-13 में एक अन्य संयंत्र पोरबंदर गुजरात में तथा दूसरा कटनी मध्य प्रदेश में 1915 में तथा तीसरा लखेरी राजस्थान में 1916 में स्थापित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध ने सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहन दिया तथा 1922-23 के दौरान 6 नए संयंत्र जापला बिहार, द्वारका गुजरात, मोहगांव बनमोर तथा कैमूर मध्य प्रदेश एवं शाहबाद कर्नाटक में स्थापित किए गए। 1934 में 11 में से 10 सीमेंट कंपनियां एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड ACC में मिल गईं। 1937 में स्थित डालमिया समूह ने अपने संयंत्र डालमिया नगर बिहार, डालमियापुरम तमिलनाडु तथा डालमिया दादरी पंजाब में स्थापित किए। 1947 तक सीमेंट के संयंत्रों की संख्या बढ़कर 18 हो गई, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 21.15 लाख टन की थी। स्वतंत्रता के बाद 3 नए कारखाने तला युथु तमिलनाडु, कोट्टायम केरल तथा सिक्का गुजरात में स्थापित किए गए। नियोजन काल में व्यापक निर्माण कार्यों के कारण सीमेंट की मांग बहुत बढ़ गई, जिससे 1970 के दशक के अंत तक सीमेंट की स्थापित क्षमता 29.3 मिलियन टन पहुंच गई। किंतु सीमेंट उत्पादन में वास्तविक तेजी 1989 में सीमेंट का भी नियंत्रण करने के बाद आई। 1992 तक सीमेंट की स्थापित क्षमता 65 मिलियन टन हो गई। इस समय 2005 में देश में 128 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 151.69 मिलियन टन है, तथा 300 लघु सीमेंट संयंत्र हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 11.10 मिलियन टन प्रतिवर्ष सीमेंट उत्पादन की है। भारत अब विभिन्न प्रकार के सीमेंट का उत्पादन करने लगा है, जिसमें साधारण पोर्टलैंड सीमेंट OPC, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट PPC, पोर्टलैंड फर्नेस स्लैग सीमेंट PBFC, तेलकूप सीमेंट तथा सफ़ेद सीमेंट सम्मिलित हैं। भारत में सीमेंट उद्योग ने प्रौद्योगिकी उन्नति तथा आधुनिकीकरण के साथ साथ कदम बढ़ाया है। यह उद्योग अधिकांशतः निजी क्षेत्र में है। ACC बृहत्तम लार्सेन ट्रूबो, बिरला समूह, जेके समूह, दिग्विजय समूह, नर्मदा सीमेंट, आंध्रा सीमेंट, इंडिया सीमेंट आदि निजी क्षेत्र के कुछ बड़े समूह हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके 10 संयंत्र मंदार, कुरकुंता, बीकाजन, राजबन, अकालतारा, नयागांव, येरागोंतला, चरखी, दादरी, आदिलाबाद तथा तंदूर में स्थापित हैं। स्थानीयकरण, चूना पत्थर की स्थिति सीमेंट उद्योग की स्थापना का प्रमुख कारक है। विंध्यन शैलों में सीमेंट वर्ग का चूना पत्थर प्रचुरता से मिलता है। जिप्सम राजस्थान में तथा कोयला झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में मिलता है। 100 टन सीमेंट बनाने के लिए 160 टन चूना पत्थर, 34 टन कोयला, 4 टन जिप्सम, 0.4 टन बॉक्साइट तथा 0.2 टन चीका आवश्यक होते हैं। चूंकि सीमेंट के कच्चे माल तथा तैयार उत्पाद भारी होते हैं, अतः सीमेंट उद्योग की स्थिति में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीमेंट का उत्पादन आर्द्र तथा शुष्क प्रक्रमों द्वारा होता है। आर्द्र प्रक्रम के लिए अधिक मात्रा में जल की तथा शुष्क प्रक्रम में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। वितरण, यद्यपि सीमेंट के संयंत्र देश भर में विकेंद्रित हैं, उनका स्थानिक वितरण विंध्यन तथा कुडप्पा शैलों में मिलने वाले चूना पत्थर की उपस्थिति से सुसंगत मिलता है। 8 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक तथा झारखंड में देश की लगभग 3/4 स्थापित क्षमता एवं सीमेंट का उत्पादन पाया जाता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सहित देश का बृहत्तम सीमेंट उत्पादक है, जहां देश की 20.8% स्थापित क्षमता तथा 22.5% सीमेंट उत्पादन मिलता है। सीमेंट संयंत्र सतना, कटनी, कैमूर, बनमोर, मंधार, नीमच, मैहर, टिल्डा आदि में तथा जामूल छत्तीसगढ़ में अवस्थित हैं। कच्चे माल तथा गंगा के मैदान में बड़े बाजार की निकटता इन राज्यों के लिए प्रमुख लाभ हैं। आंध्र प्रदेश में देश की लगभग 10.7% स्थापित क्षमता तथा 18.2% उत्पादन होता है। राज्य में 18 संयंत्र हैं, जो प्रमुखतः विजयवाड़ा, कृष्णा, पन्याम, येरागुंतला, आदिलाबाद, मचेरियल, तंदूर, विजयनगरम, नदीकुदी, करीमनगर, विशाखापट्टनम, पेदापल्ली तथा कुरकुंता में अवस्थित हैं। राजस्थान, राजस्थान में देश की 10.5% स्थापित क्षमता तथा 11% उत्पादन मिलता है। इस दृष्टि से राजस्थान देश का तृतीय बृहत्तम सीमेंट उत्पादक राज्य है। राज्य में सीमेंट के 10 संयंत्र हैं, जो सवाई माधोपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, लखेरी, सिरोही, निम्बाहेड़ा, ब्यावर तथा बनास में अरावली पहाड़ियों की तलहटी में स्थित हैं, जहां सीमेंट वर्ग का चूना पत्थर मिलता है। गुजरात, गुजरात में देश की 9.4% स्थापित क्षमता तथा 9% उत्पादन पाया जाता है। राज्य में 10 संयंत्र सिक्का, द्वारका, पोरबंदर, राणावाव, सेवालिया, ओखा, बडोदरा, भावनगर तथा वेरावल में अब स्थित हैं। तमिलनाडु, तमिलनाडु में देश का 8.5% सीमेंट उत्पादन तथा 7.8% स्थापित क्षमता पाई जाती है। राज्य में 8 संयंत्र हैं, जो तलायुथु, अलंगुलम, डालमियापुरम, तालुकापट्टी, संकरी दुर्ग, मधुकराई, पोलियुर तथा श्रीविलीपथुर में उपस्थित हैं। कर्नाटक में देश की 8% स्थापित क्षमता तथा 8.4% सीमेंट उत्पादन मिलता है। राज्य के 8 सीमेंट संयंत्र शाहाबाद, बाड़ी, कुरकुंता, बगलकोट, भद्रावती, अम्बास समुद्रम, होरा दुर्ग तथा तोरागल्लू में अब स्थित हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में देश की 8% स्थापित क्षमता तथा सीमेंट का उत्पादन मिलता है। यहाँ 5 संयंत्र चंद्रपुर, रत्नागिरी, सेवरी तथा मानिकगढ़ में अब स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में 4 सीमेंट संयंत्र चुर्क, डल्ला, चुनार तथा डालमिया दादरी में अवस्थित हैं। बिहार, झारखंड सहित के सीमेंट संयंत्र डालमिया नगर, जापला, चाईबासा, सिंदरी, खिलारी, बंजार तथा कल्याणपुर में अवस्थित हैं, जो देश का 2.4% सीमेंट उत्पादन करते हैं। सीमेंट उत्पादन करने वाले अन्य उल्लेखनीय राज्य उड़ीसा, राजगंगपुर, बोरगढ़, हिमाचल प्रदेश राजबन, जगत एवं पौंटा साहिब, हरियाणा, भूपेंद्र दादरी, पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर, पुरुलिया, आसनसोल, मुदुकुंदा, जम्मू एवं कश्मीर, बुयान, बसोली, खरू, असम, बोकाजन एवं गर्म पानी, मेघालय, गारो, चेरापूंजी तथा केरल, कोट्टायम, तत्ताकोमा एवं तालुकापट्टी हैं। उत्पादन। देश में सीमेंट उत्पादन की प्रगति तालिका में प्रदर्शित है। भारत में सीमेंट उत्पादन की प्रगति मिलियन टन 1950-51 में 2.7%, 2.7 मिलियन टन 1960-61 में 8.0 मिलियन, 1970-71 में 14.3, 1980-81 18.6, 1990-91 48.8, 2000-2001 में 97.6, 2001-2002 में 106.9, 2002-2003 116.4, 2003-2004 123.5। स्रोत इकोनॉमिक सर्वे 2004-05। निर्यात। भारत, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, मस्कट, मिस्र, म्यांमार तथा अफ्रीकी देशों को सीमेंट निर्यात करता है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया तथा चीन से कठिन स्पर्धा करनी पड़ी रही है। 2003-04 में भारत में 8.99 मिलियन टन सीमेंट तथा क्लिंकर का निर्यात किया गया। खाद्य उद्योग, फूड इंडस्ट्रीज, चीनी, आटा, चावल, खाद्य तेल एवं वनस्पति तथा शराब उद्योग, कृषि से प्राप्त होने वाले कच्चे मालों पर आधारित कुछ खाद्य उद्योग हैं, जिनमें चीनी उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी उद्योग। चीनी भारतीय आहार का एक महत्वपूर्ण मद है। भारत में वैदिक काल से ही गुड़ बनाने का प्रचलन रहा है तथा अथर्ववेद, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज के लेखों 360 ईसा पूर्व में चीनी के अनेक विवरण मिलते हैं। खंडसारी उद्योग देश में आज भी प्रचलित है। वर्तमान समय में भारत विश्व का अग्रणी चीनी उत्पादक देश है। यह उद्योग 3.6 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है तथा 25 मिलियन गन्ने के कृषकों का भरण पोषण करता है। सीरा तथा खोई जैसे इसके उपजात पदार्थ अनेक सहायक उद्योगों को प्रश्रय देते हैं। ऐतिहासिक विकास। यद्यपि भारत गन्ने का जन्म स्थान है तथा घरेलू उपभोग के लिए बहुत प्राचीन काल से गुड़ तथा खंडसारी बनाता आ रहा है, परिष्कृत चीनी उद्योग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विकसित हुआ, जब ब्रिटिश उद्यमकर्ता ने उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चीनी के कारखाने लगाने के सफल प्रयास किए। उद्योग की प्रगति बहुत धीमी रही। 1919-20 में देश में केवल 18 चीनी के कारखाने थे। 1931 में चीनी के आयात पर तटकर शुल्क लगाने से उद्योग को प्रोत्साहन मिला। परिणामतः कारखानों की संख्या 1931 में बढ़कर 32 से बढ़कर 1937 में 137 हो गई तथा उत्पादन 1.6 लाख टन से बढ़कर 10 लाख टन हो गया। 1950-51 में देश में 139 चीनी के कारखाने थे, जिनकी उत्पादन क्षमता 11.34 लाख टन थी। नियोजन काल में उद्योग ने तीव्र प्रगति की तथा 1998 में कारखानों की संख्या बढ़कर 435 हो गई तथा 1998-99 में चीनी का उत्पादन 15.52 लाख टन हो गया। स्थानीयकरण एवं वितरण। चीनी उद्योग प्रधानतः कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। गन्ना एक भारी, स्थूल तथा भार हानि वाला पदार्थ है, जिसे काटने के बाद थोड़ी अवधि ही प्रसंस्कृत करने की आवश्यकता होती है। फसल पकने के बाद गन्ने की मिठास घटने लगती है। कच्चे माल का परिवहन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अधिकांश गन्ना कृषकों द्वारा कारखानों तक बैलगाड़ियों तथा भैंसा बुग्गियों में पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रकों तथा ट्रैक्टर ट्रालियों द्वारा भी गन्ने का परिवहन किया जाता है। अतएव गन्ना संग्रहण केंद्र कारखानों में से 50 किलोमीटर के अंदर अवस्थित होते हैं। चीनी के कारखाने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं बिहार के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में सघन रूप से संकेंद्रित हैं। ये सात राज्य मिलकर देश की 90% चीनी का उत्पादन करते हैं। महाराष्ट्र हाल ही में चीनी का 35.7% राष्ट्रीय उत्पादन करके देश का बृहत्तम चीनी उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। राज्य में चीनी के 104 कारखाने हैं, जिनमें से 87 सहकारी क्षेत्र में हैं। राज्य में चीनी की अधिकतम रिकवरी 11% तक दर्ज होती है। राज्य में गन्ना पेराई का सत्र देश में सबसे लंबा होता है। अहमदनगर चीनी उत्पादन का अग्रणी जिला है। इसके बाद क्रमशः कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, सतारा, सांगली, नासिक, औरंगाबाद आदि का स्थान है। अधिकांश कारखाने बड़े आकार के हैं तथा पेराई सत्र 140 से अधिक दिनों तक चलता है। उत्तर प्रदेश जो पहले चीनी का बृहत्तम उत्पादक था, अब पिछड़कर दूसरे स्थान पर आ गया है। यहाँ 1999-2000 में देश का 25% चीनी उत्पादन हुआ। राज्य में 116 चीनी के कारखाने हैं, जो अधिकांशतः गंगा यमुना दुआब तथा तराई क्षेत्र में स्थित हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, गाजियाबाद, देवरिया, बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, सीतापुर, फैजाबाद राज्य के प्रमुख चीनी उत्पादक जिले हैं। उत्पादन में गिरावट का प्रमुख कारण पुराने कारखाने, श्रमिक प्रबंधन की समस्याएं तथा छोटा पेराई सत्र है। तमिलनाडु में चीनी के 30 कारखाने हैं, जो देश का 9.7% चीनी उत्पादन करते हैं। राज्य में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है, गन्ने में मिठास भी अधिक होती है तथा पेराई सत्र भी लंबा होता है, जिससे कारखानों में अधिक चीनी उत्पादन होता है। अधिकांश चीनी के कारखाने कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली, कुद्दलौर, रामनाथपुरम, चिंगलरूर तथा वेल्लोर में अवस्थित हैं। कर्नाटक में 28 कारखाने तथा देश का लगभग 8.7% चीनी का उत्पादन पाया जाता है। इस प्रकार यह देश का चौथा बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है। बेलगाम, मांड्या, बेलारी, सिमोगा, चित्रदुर्ग तथा बीजापुर चीनी उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। आंध्र प्रदेश में चीनी के 33 कारखाने हैं, जो अधिकांशतः हैदराबाद, विजयवाड़ा, हासपेट, निजामाबाद, काकीनाड़ा, मेडक, चित्तूर, श्रीकाकुलम आदि में अवस्थित हैं। राज्य में देश का 6.5% चीनी उत्पादन होता है। गुजरात में चीनी के 16 कारखाने तथा देश का 6.3% चीनी उत्पादन होता है। सूरत में चीनी के कारखानों की सर्वाधिक संख्या मिलती है। जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, वलसाड तथा भावनगर अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। बिहार में 28 चीनी के कारखाने चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर, छपरा तथा शाहबाद जिलों में अवस्थित हैं। राज्य में देश का 3.4% चीनी उत्पादन होता है। गन्ने में कम मिठास, पुरानी मशीनरी, छोटा पेराई सत्र आदि कारक राज्य में उत्पादन में गिरावट के लिए उत्तरदायी हैं। हरियाणा में 8 चीनी के कारखाने देश का 3.1% चीनी उत्पादन करते हैं। ये कारखाने करनाल, अंबाला, रोहतक, हिसार तथा गुड़गांव जिलों में स्थित हैं। पंजाब में 13 चीनी के कारखाने गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, रोपड़, पटियाला तथा अमृतसर जिलों में अवस्थित हैं। राज्य में देश का 2.3% चीनी उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में 8 कारखाने मुख्यतः सीहोर, जावड़ा, सारंगपुर, माहिदपुर तथा ग्वालियर में अवस्थित हैं। यहाँ देश का 0.9% चीनी उत्पादन होता है। राजस्थान के चीनी के कारखाने गंगानगर, उदयपुर, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में अवस्थित हैं। अन्य चीनी उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया तथा वर्धमान जिले, उड़ीसा, केरल, असम आदि हैं। उत्पादन चीनी एक प्रमुख उपभोक्ता वस्तु है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इसकी मांग बढ़ने के कारण उत्पादन में भी वृद्धि होती गई, जैसा कि तालिका में प्रदर्शित है। भारत में चीनी उत्पादन की प्रगति मिलियन टन 1950-51 में 1.13, 1960-61 में 3.02, 1970-71 में 3.74, 1980-81 में 5.15, 1990-91 में 12.04, 1998-99 में 15.52। स्रोत इकोनॉमिक सर्वे 2004-05। व्यापार चीनी का आंतरिक व्यापार सरकार की दोहरी मूल्य व्यवस्था द्वारा नियमित होता है। कारखानों के कुल उत्पादन का 40% सरकार एक निश्चित मूल्य पर लेवी के रूप में ले लेती है तथा 60% चीनी खुले बाजार में अधिक मूल्य पर बिकती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां अधिशेष उत्पादन होता है। सामान्य वर्षों में भारत कुछ चीनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, श्रीलंका, मिस्र, केन्या, वियतनाम, सूडान आदि को निर्यात करता है।